HD Smartcast. You are listening to an HD Smartcast original.
नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और मैं आप सभी का HD Smartcast की ओरिजिनल पेशकश 51 शक्तिपीठ पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ माता सती के अंग आभूषण तथा वस्त्र के हिस्से धरती माने धारण किए वहाँ वहाँ शक्ति पीठ बने। इस पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको ले चलूंगी देवी के 51 शक्ति पीठ की यात्रा पर, जिसमें जानेंगे कि शक्ति पीठ कैसे बने, उनका महत्व क्या है, उसकी कहानी और वहाँ कैसे पहुँचे।
पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे दक्ष की इच्छा के विरुद्ध महादेव और सती का विवाह हुआ और सती हट करके कैलाश से वापस पिता दक्ष के यज्ञ समारोह में बिन बुलाए चली जाती हैं। अब सुनाती हूँ आपको आगे की कहानी।
देवी सती नंदी और गणों के साथ कनखल में उस स्थान पर पहुंची जहाँ यज्ञ हो रहा था। वहाँ किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया। द्वारपालों ने सती समेत नंदी और शिव गणों को द्वार पर ही रोक दिया। तब उन्हें अपने मायके के द्वारपालों को आग्रह करके अकेले ही प्रवेश करना पड़ा। उस यज्ञ में सती ने विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा, सरस्वती, इंद्र, किन्नर, यक्ष आदि सभी देवताओं के भाग देखे, परंतु शिव भाग उन्हें नहीं दिखा। तब सती को बहुत क्रोध आया।
पिताजी, आपने परम मंगलकारी शिव को यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? उनके भाग के बिना तो कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता।
तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हें और उस पाखंडी को आमंत्रित नहीं किया। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, चली जाओ यहाँ से। अब तुम उस अधनंगे कपाली शिव की पत्नी हो जो भूत प्रेतों का स्वामी है, दुरात्मा, कपाली, ढोंगी, नाट्य करने वाला, स्वांग रचाने वाला शमशानवासी। उसका इस महायज्ञ में कोई भाग नहीं।
पिताजी, बहुत हुआ अपमान।
स्वामी, रुक जाइए, रुक जाइए, मत करिए ये पाप।
सती पुत्री, तुम लौट जाओ अपने शिव के पास, चली जाओ यहाँ से, इसी में सबकी भलाई है।
हाँ हाँ, चली जाओ। तुमने अपनी इच्छा से उस जंगली से बिना हमारी आज्ञा के विवाह किया था। अब तुम उस धूर्त पाखंडी के पास ही जाओ। इस महायज्ञ में तुम्हारा कोई काम नहीं।
दक्षायनी को तब महादेव की कही बातें याद आने लगी कि उन्होंने मुझे बहुत रोका था, समझाया था। सती ने अपने पिता से अनुरोध किया कि आप महादेव की निंदा ना करें, लेकिन दक्ष ने ना सुनी और महादेव के लिए अब शब्द कहने बंद नहीं किए। दक्ष द्वारा शिव के प्रति ऐसे निंदा और द्वेष से भरे वचनों को सुनकर देवी सती क्रोध से लंबी सांसें खींचते हुए बोली,
प्रजापति दक्ष, बहुत हुआ।
जो महादेव की निंदा करता है अथवा उनकी निंदा सुनता है, वो तब तक नरक में रहता है जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। पितामह ब्रह्मदेव, श्री हरि, आप कैसे महादेव के बिना इस यज्ञ में आहुति स्वीकार कर रहे हैं? आप सभी देव देविया, यक्ष, ऋषि, मुनि, किन्नर कैसे महादेव का अपमान सुन रहे हैं?
सती के आग्रह पर भी दक्ष ने कटु वचन बोलने बंद नहीं किए। फिर उन्होंने क्रोध में महाकाली का रूप धारण कर लिया और बोली,
मूर्ख दक्ष, तुम्हारी तपस्या के फल स्वरूप मैंने तुम्हारे घर में जन्म लिया था, परंतु अब तुम्हारे ही द्वारा उत्पन्न इस शरीर को मैं अपनी योग अग्नि से नाश कर इस यज्ञ का विनाश करूंगी।
ऐसा कहकर देवी सती सभी देवताओं के देखते देखते यज्ञ अग्नि में प्रवेश कर गई। अपनी योग अग्नि से उन्होंने स्वयं को भस्म कर डाला। उनका शरीर वहीं गिर पड़ा। भक्तजन आज भी कनखल में उस स्थान को पूजने जाते हैं जहां सतयुग में ये सारे घटनाक्रम हुए। साथ ही ये घटनाक्रम हमें सिखाते हैं कि हमें कहीं भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। कनखल उत्तराखंड के हरिद्वार शहर से बिल्कुल सटा हुआ है। गंगा के पश्चिमी किनारे पर स्थित कनखल के विशेष आकर्षण प्रजापति मंदिर, दक्ष महादेव मंदिर सती घाट के नाम से वह भूमि है जहां पुराणों के अनुसार शिव ने सती के प्राणोत्सर्ग के पश्चात दक्ष यज्ञ का ध्वंस किया था। कनखल आश्रमों तथा विश्व प्रसिद्ध गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर बस, ट्रेन, पैदल या किसी भी माध्यम से साल के किसी भी समय यात्रा की जा सकती है। यहाँ के अधिकांश निवासी ब्राह्मण हैं। सती के भस्माभिभूत शरीर के धरती पर गिरते ही वहाँ हाहाकार मच गया। ये समाचार सुनकर भगवान शिव क्रोध और शोक से भरकर तांडव करने लगे। तत्पश्चात तीसरा नेत्र खुलने से वीरभद्र प्रकट हुए, जो यम के समान भयानक रूप वाले थे। उन्होंने भगवान शिव की आज्ञा से यज्ञ स्थल पर जाकर दक्ष का सर काट डाला। फिर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। देवी सती के मृत शरीर को देखकर वो सुध बुध खो बैठे और एक सामान्य मानव की तरह चिल्ला चिल्ला कर अश्रु बहाने लगे।
सती, सती, मैंने तुम्हें समझाया था कि यज्ञ में तुम्हारा अहित होगा। रुक जाओ, मत जाओ, क्यों नहीं सुनी तुमने मेरी? सती, तुम्हारे हट से आज हम अलग हो गए, बिछड़ गए। सती, सती। मैंने आपसे कहा था नारायण कि मेरी सती बिन बुलाए यज्ञ में गई है, उसका ध्यान रखना। सती को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, किंतु देखो आज मेरी सती की क्या दशा हो गई।
हे भोलेनाथ, एक ही पल में मेरा संसार टूट गया। कृपा करिए महादेव, मेरी पुत्री भी चली गई, मेरे स्वामी भी चले गए। दया कर दीजिए, क्षमा दान दीजिए प्रजापति दक्ष को। अब तो उनका सिर भी धड़ से अलग हो गया है। कृपा करें, इन्हें जीवन दान दे दीजिए भोलेनाथ।
सही कह रही है प्रसूति, दक्ष को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है। महादेव, उसे क्षमा कर पुनर्जीवित कर दीजिए। दक्ष के बिना सृष्टि का संचालन कठिन हो जाएगा। दक्ष ने ही तो मानव जाति को समृद्धि का संरक्षण, उच्च जीवन, ऊर्जा का सही उपयोग सिखाया है। उसे अभी बहुत से कार्य पूर्ण करने हैं, जिसके लिए दक्ष का जन्म हुआ था। कृपा करें, उसे जीवन दान दें।
ब्रह्मदेव के आग्रह पर शिव ने माता प्रसूति के पति दक्ष को क्षमा कर दिया और बकरे का सर जोड़कर उसे जीवन दान दिया। उसके बाद दक्ष भगवान शिव का परम भक्त बन गया। इसके बाद भगवान शिव अपनी सुध बुध खोकर एक आम व्यक्ति की तरह सती के मृत शरीर को लेकर तीनों लोकों में भटकने लगे। संसार में आसुरी शक्तियों की वजह से त्राही त्राही मचने लगी। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव आग्रह करते हैं कि आप कई वर्षों से ऐसे ही लोक परलोक भटक रहे हैं। आप सती के शरीर को विदा कर कैलाश वापस लौट चलिए और सृष्टि को नाश से बचा लीजिए। लेकिन उनके आग्रह पर भी शिव नहीं मानते। शिव कहते हैं,
कैसी सृष्टि, कैसी शक्ति? मेरी शक्ति, मेरी सृष्टि तो सती थी। सती नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। शक्ति बिन शिव केवल शव है, केवल शव।
शिव एकांत में रहने की इच्छा बता ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु को लौट जाने को कहते हैं।
हे नारायण, महादेव जो सदैव माया से दूर रहे, ये उन्हें क्या हो गया है? त्रिमूर्ति होने की ये कैसी सजा? हम सती को पुनः जीवित क्यों नहीं कर सकते? हम इतने असहाय क्यों हैं? मुझसे उनका दुख देखा नहीं जा रहा नारायण। कितना मार्मिक दृश्य है ये।
अत्यंत दुखदाई है ब्रह्मदेव, लेकिन इससे भी ज्यादा दुखदाई वो होगा जो अब होने वाला है।
शिव शक्ति के अभाव में धरती और स्वर्ग पर आसुरी शक्तियों का राज्य हो गया। तब दुखी होकर देवता पुनः नारायण के पास पहुंचे। देवताओं के आग्रह और प्रार्थना पर नारायण बताते हैं कि त्रिदेव के अभाव में वो केवल एक ही बार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी देवतागण मिलकर फैसला करते हैं कि तारकासुर के वध की जगह शिव की वेदना को खत्म करना चाहिए, जो कि माता सती के शरीर के टुकड़े कर धरती पर समाहित होने से ही पूर्ण होगा। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को उनके शरीर को विच्छेदित करने के लिए भेजा और वो सभी टुकड़े धरती पर गिरे। जिन स्थानों पर ये अंग और आभूषण गिरे उन्हें शक्ति पीठ कहा गया। महादेव की ये दशा देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने आदि शक्ति की स्तुति की और उनसे महादेव का शोक हरने के लिए प्रार्थना की। तब शिवा देवी ने महादेव को दर्शन देकर कहा,
शंभू शंभू, ये आपने अपनी क्या दुर्दशा कर ली है? आपको क्या हो गया है? ये आप कैसे भूल गए कि शिव और शक्ति एक दूसरे से पृथक नहीं है? आप लौट जाइए कैलाश को। शीघ्र ही मैं हिमालय की कन्या पार्वती के रूप में जन्म लूंगी और आप मेरा पाणी ग्रहण करेंगे। उसके बाद हम सदैव शिव शक्ति के रूप में रहेंगे। हमें कोई भी पृथक नहीं कर सकेगा। महेश्वर, मेरे सती रूप शरीर का नाश इस संसार की रक्षा के लिए अनिवार्य था। मेरे शरीर के विभिन्न अंग और आभूषण जिन स्थानों पर गिरे हैं, वहाँ पर वो पिंड रूप ले चुके हैं। ये स्थान शक्ति पीठ कहलाएंगे और इन स्थानों पर कोई भी आसुरी शक्ति वास नहीं कर पाएगी। मेरे ये शक्ति पीठ युगो युगो तक संसार की रक्षा करेंगे। आप जाइए प्रभु और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए।
देवी के दर्शनों से महादेव शांत हुए और उन्होंने स्वयं शक्तिपीठों की स्थापना की और उनकी रक्षा के लिए हर शक्तिपीठ पर एक भैरव रूप को प्रतिस्थापित किया। शक्तिपीठ की स्थापना होने से असुरों को पृथ्वी छोड़कर जाना पड़ा। इस प्रकार शिव शक्ति ने अपनी लीला से संसार को स्वस्थ किया और हमें हमारे शक्तिपीठ मिले, जहाँ देवी भैरव के साथ अपने विभिन्न रूपों में आज भी विद्यमान है। शक्तिपीठों की संख्या विभिन्न पुराणों में अलग अलग बताई गई है, जैसे तंत्र चूड़ामणि में 52, देवी भागवत में 108, देवी गीता में 72 और देवी पुराण में 51 बताई गई है। देवी के 52 शक्तिपीठों की व्यापक मान्यता है। ये शक्तिपीठ भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत में स्थित हैं। शक्तिपीठों के बारे में मान्यता है कि देवी सती के अंग जिन स्थानों पर गिरे उन स्थलों की यात्रा और वहां उपासना करने से व्यक्ति के संबंधित अंग में अभूतपूर्व शक्ति का संचार हो जाता है। वहां उनके अंगों से संबंधित विभिन्न साधनाएं सिद्ध की जा सकती हैं और हर मनोकामना पूर्ण होती है। इन स्थानों पर कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती, क्योंकि ये स्थल सदाशिव और आदि शक्ति के एकाकार स्वरूप की दिव्य शक्ति का परिणाम है। कालांतर में देवी सती ने पर्वतराज हिमालय और अप्सरा मैनावती की पुत्री पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। अपनी वर्षों की कठोर तपस्या से उन्होंने महादेव को प्रसन्न कर अपने पति रूप में प्राप्त किया। फिर प्रकृति और पुरुष के मिलन से उत्पन्न हुए शिव शक्ति के पुत्र कार्तिकेय महादेव के वीर पुत्र ने देवासुर संग्राम में देवताओं का सेनापति बन समस्त असुरों का नाश किया, जिसमें असुर तारकासुर का वध हुआ और स्वर्ग को दैत्यों से मुक्त करके देवताओं को उन्होंने उनका अधिकार दिलाया। इसके बाद महादेव और गौरी पुत्र गणेश का जन्म हुआ, फिर बहन अशोक सुंदरी, और इसी प्रकार महादेव का परिवार बढ़ता गया और वो देवों के देव होने के बाद भी धरती पर ही कैलाश में घर बसाकर रहने लगे। ये मान्यता है कि आज भी भगवान शंकर अपने परिवार के साथ हिमालय की चोटियों के बीच कैलाश में गृहस्थ जीवन जी रहे हैं और संसार का निरंतर कल्याण कर रहे हैं। तो आप ही बताइए, क्या इससे सुंदर कोई प्रेम कहानी हो सकती है? महादेव और देवी आदि शक्ति के प्रेम ने समस्त संसार और स्वर्ग का कल्याण किया और समस्त ब्रह्मांड को प्रेम की परिभाषा दी। थोड़ा गहराई से सोचेंगे तो समझेंगे कि सती रूप कोई भी आत्मा जो मनुष्य रूप में है, वो अपने तप और साधना से परमात्म रूप शिव को पा सकती है और इसका मार्ग सिर्फ प्रेम और भक्ति ही है। अगले एपिसोड से हम शुरू करेंगे अपने 51 शक्तिपीठों की यात्रा। आगे की कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और आप सुन रहे हैं 51 शक्तिपीठ। अगर आप कोई जानकारी या फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर, निष्ठा सारस्वत ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। साथ ही आप HT Smartcast को भी फॉलो कर सकते हैं उनके सभी सोशल हैंडल्स पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब। और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग इन करें htsmartcast.com पर।
इस पॉडकास्ट सीरीज को केवल मनोरंजन और जानकारी के लिए बनाया गया है। इसमें साझा किए गए 51 शक्तिपीठों की जानकारी का आधार आपसी कही सुनी और पौराणिक किताबें हैं। इससे हमारा उद्देश्य किसी भी मनुष्य, जाति या समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, इसलिए इससे जुड़े किसी भी विवाद के हम उत्तरदायी नहीं है। इसकी नरेशन, रिसर्च एंड राइटिंग निष्ठा सारस्वत ने की है। डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन दीक्षा चौरसिया, एडिटिंग एंड साउंड डिजाइनिंग अमरिंदर सिंह ने की है। इसमें महादेव की आवाज RJ रघु रफ्तार ने, विष्णु की आवाज विपिन सिंह ने, दक्ष की आवाज RJ शरत ने, सती और आदिशक्ति की आवाज दीक्षा ने और ब्रह्मा की आवाज आशीष भूसाल ने दी है।
This was an HD Smartcast original.
HD Smartcast.